الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ذكر بلند صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قرآن حكيم في مقام سخن، سورة إخلاص، سورة توحيد، سوره قل هو الله احد، فراز وحی، وحی الهی کا بلند ترین مقام، اور قیام قیامت تک حقیقت کی جستجو میں سرگردہ ذہن انسانی کے لیے ایک کوثر جاری ہے.
سبحان اللہ.
چشمہ کوثر سورہ اخلاص ہے. کون ذہن ہے، وہ کون سا ذہن ہے، کس انسان کا ذہن ہے جس میں حقیقت کی جستجو نہ ہو؟ حقیقت کی جستجو ہر ذہن میں پائی جاتی ہے. بلکہ اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ حیوان میں اور انسان میں بنیادی فرق یہی ہے کہ حیوان میں حقیقت کی جستجو نہیں ہوتی، انسان میں حقیقت کی جستجو ہوتی. یہ انسان ہے جس کے ذہن میں حقیقت کی جستجو ہوتی ہے، تلاش، جستجو، کھوج، حقیقت تک پہنچنے کی تڑپ، حقیقت کو پا لینے کی للک، حقیقت تک پہنچنے کی آرزو، حقیقت کی محبت، حق کا عشق. یہ سب خصوصیات ذہن انسانی اور قلب انسانی اور روح انسانی کی ہیں، حیوان کی خصوصیتیں تھوڑی ہیں. اب یہ میرا بہت پرانا جملہ ہے، حقیقتیں تو نہیں بدلتی نا، تو جو جملے حقیقت کے ترجمان ہوتے ہیں وہ دہرانے پڑتے ہیں. یہ انسان ہے جو دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، ایک علم، ایک عشق. حیوان میں نہ علم ہوتا ہے نہ عشق. یہاں عشق کے اس پاکیزہ تصور کو ذہن میں رکھیں جسے مغربی ادب و حکمت کی اصطلاح میں بہت سے لوگ پلیٹونک لو کہتے ہیں، یعنی हुस्न से या खैर से या ब्यूटी से, मोहब्बत जिनसी कशिश नहीं, उसे मोहब्बत नहीं कहते असली। मादी कशिश को मोहब्बत नहीं कहते, मोहब्बत खुद मुजर्रद है, मोहब्बत खुद एक नूर है। मादा, ये मादा, इसका कुल सरमाया साया है। मादे की पूंजी साया है, मोहब्बत नूर है। मोहब्बत नूर है, इश्क नूर है। तो दो चीजें इंसान की पहचान है, इल्म और इश्क। दोनों के मरातिब हैं, इल्म के भी मरातिब हैं, इश्क के भी मरातिब हैं। आखिरी मरतबा, बुलंद तरीन मरतबा वो है जहां हकीकत का इल्म हो, हकीकत से इश्क हो, यानी तजाद ना हो। इल्म हो तो हकीकत का, इश्क हो तो हकीकत से हकीकत का इश्क। ये जो मकतब है, मकतब हुसैन इब्ने अली अलैहि सल्लत व
सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
ये मकतब ऐसा है, ये मजलिस ऐसी है, ये फजा ऐसी है, ये एकेडमी वो एकेडमी है जहाँ खुद ब खुद इंसान मजबूर नहीं, मजबूल हो जाता है। दोनों में फर्क है। अब मैं मजबूर हूँ कि मैं वजाहत करूँ, मजबूल जिबिल्लत से है, मजबूर जबर से है। यानी इंसान की फितरत जो है, फितरत अवलिया, वो इतनी फ़ाल हो जाती है कि इंसान की जिबिल्लत ऐसी हो जाती है कि वो हकीकत रसी की राह में ढल जाता है। सुभान
अल्लाह,
अब आप समझ रहे हैं कि इस उनवान की मानवियत क्या है, हकीकत और हुसैन, इनका क्या रिश्ता है। खुदा की कसम, इस खाकनाए दहर में कोई हकीकत तक पहुंच नहीं सकता जब तक कि हुसैन की रोशनी साथ में ना हो। हुसैन नूर है, हुसैन नूर है, हुसैन वो रोशनी है जो हकीकत तक पहुंचाती है। जो लोग नहीं पहचानते इस नूरानी वजूद को, जो लोग आशना नहीं हैं हुसैन इब्ने अली से, सैयद अश्शुहदा, इमाम अश्शुहदा, अबू अश्शुहदा, उनके लिए बस यही कह सकता हूँ कि कैसी महरूमी से महरूमी है, महरूम है। ये और बात है, एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, अगर आपके दिल और दिमाग बेदार हैं तो इस जुमले की मानवियत यकीनन दर्क करेंगे आप, और यहाँ इस फजा में, इस फर्श पे दर्क नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। हुसैन नूर है, हुसैन रोशनी है, और वो नूरे मुजर्रद है। लेकिन उनको समझने के लिए इस रोशनी की मिसाल दी जा सकती है। इस रोशनी को कोई इसकी हकीकत और माहियत से वाकिफ हो या वाकिफ ना हो, फैज तो दोनों उठाते हैं
ना।
तवज्जो है, किसी साइंटिस्ट ने मेहनत की, उसने लाइट की माहियत पर, नेचर ऑफ लाइट, रियलिटी ऑफ लाइट या नेचर ऑफ लाइट, एसेंस ऑफ लाइट, माहियत लाइट की, रोशनी की, नूर की, उस पर काम किया, वर्क किया। वो जानता है कि ये जो सन रेज हैं ये क्या हैं, इनमें पार्टिकल्स हैं तो कौन से हैं, और इनकी जो मूवमेंट है वो कैसी है, वेलोसिटी है तो वो कैसी है, कितनी है, इस लाइट से क्या क्या हम, इस एनर्जी से क्या क्या फवायद कहाँ कहाँ हासिल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ सनलाइट से ऐसी एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कि ज़रूरत है ज़िंदगी की तमाम चीज़ें उससे पूरी हो रही हैं, है ना। वो कर रहे हैं, सोलर एनर्जी वगैरह वगैरह, कितने प्लांट्स काम कर रहे हैं, ये वो फ़ायदा उठा रहे हैं जो नूर की हकीकत की मारिफत रखते हैं। लेकिन जो मारिफत नहीं रखते, फायदा तो उन्हें भी पहुंच रहा है। तवज्जो है, यही कैफियत उस नूर की है जो नूर मुजर्रद है इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के शरीर। फायदा तो सबको पहुंच रहा है, लेकिन ज्यादा फायदा वही उठा सकते हैं जिनको मारिफत हुसैन की हासिल है। ये जो कोशिशें हैं कि आका की मारिफत हासिल हो, ये किस लिए कोशिश है? ताकि बशरियत ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। ये आप जो मजलिसें मुनाकिद कर रहे हैं, ये आलम बशरियत पे एहसान है। आका की खिदमत में अर्ज नियाज है, बशरियत पर एहसान है। आका की खिदमत में अर्ज नियाज है, अर्ज अदब है, अर्ज सलाम है, अर्ज तस्लीम है, उनकी खिदमत में खराज अकीदत है, लेकिन कायनात पर एहसान है। इसलिए कि आप कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस नूर हक से आशना हो जाएं। जितनी मारिफत हुसैन इब्ने अली की बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही हक की मारिफत बढ़ती चली जाएगी। हक की मारिफत बगैर वसाइल और वसायद के मुमकिन नहीं है। हकीकत रसी आसान नहीं है। और क्यों आसान नहीं है, इसको अर्ज करूं। अब मैंने उन्वान कायम कर दिया, हकीकत और हुसैन। लफ्ज़ हकीकत, लफ्ज़ हकीकत, ये इसका तर्जुमा अंग्रेजी में क्या होगा, इसका तर्जुमा फारसी में क्या होगा, अरबी में क्या होगा? आप कहेंगे अजब सवालात कर रहे हैं। अरे भई, हकीकत का लफ्ज़ तो फारसी में भी इस्तेमाल होता है, जूं का तूं, और हकीकत का लफ्ज़ अरबी में भी इस्तेमाल होता है और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो मैं कहूँगा कि बस यही है, लफ्ज़ मुश्तरक हो सकता है। मुमकिन है कि जिस मानी में आप अरब इस्तेमाल करते हो हकीकत को, आप उर्दू वाले उस मानी में इस्तेमाल ना करते हों। जिस मानी में फ़ारसी वाले इस्तेमाल करते हों, हम लोग उर्दू वाले उस मानी में इस्तेमाल ना करते हों, तो फिर ख़ुद ज़बान हिजाब बन जाती है। ये अल्फाज हिजाब बन जाते हैं। हकीकत तक पहुंचने में कितने हिजाबात से गुज़रना पड़ता है, कितने हिजाबात से गुज़रना पड़ता है। अब मसलन हकीकत का तर्जमा अंग्रेज़ी में आप क्या करेंगे, ट्रूथ या रियलिटी? अब कुछ लोग कह रहे हैं रियलिटी, कुछ लोग कह रहे हैं ट्रूथ। ये सैयद अली साहब फ़लसफ़े के तालिब इल्म हैं या फाजिल हैं, फ़लसफ़ा इनका मैदान है। अब ये क्या तर्जमा करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हकीकत इसका आम तौर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो राइटर्स हैं उर्दू लिखने वाले, वो हकीकत जब लिखते हैं तो ब्रैकेट में रियलिटी लिख देते हैं, और कहीं कहीं हकीकत लिखते हैं तो ट्रूथ लिखते हैं। खुद ट्रूथ और रियलिटी क्या बिल्कुल मुतरादिफ अल्फाज हैं, सिनोनिम्स हैं ये, एक दूसरे एक हम मानी हैं, एक ही मानी में इस्तेमाल होते हैं। कहीं कहीं ऐसा है कि हकीकत और रियलिटी यानी ट्रूथ और रियलिटी में बिल्कुल तजाद का रिश्ता होता है, बिल्कुल मुतजाद, ऑपोजिट। कैसे? मिसाल अर्ज करूं, कल की तकरीर से जहन मरबूत भी हो जाए। कल गुफ्तगू थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम लिखना पढ़ना जानते थे या लिखना पढ़ना नहीं जानते थे? आपने जिंदगी भर लिखा कुछ या नहीं लिखा, पढ़ा या नहीं पढ़ा? इस पूरी बहस को अगर खुलासा कीजिए तो बतौर मिसाल यहां पर कहा जा सकता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम लिखना पढ़ना जानते थे, लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, ये है ट्रुथ। जिंदगी भर नहीं लिखा, ये है रियलिटी। इल्मी मराहिल में क्या मुश्किलें होती हैं, हैं? किसी चीज़ को खालिस एकेडमिक, खालिस फिलोसफिकल, खालिस साइंटिफिक जाविये से देखना, अब यहाँ भी मुश्किल है। मैंने तो जैसे मुतरादिफ के तौर पे कह दिया, खालिस फिलोसफिकल और खालिस साइंटिफिक, वहाँ फिलोसफिकल और साइंटिफिक में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इल्म के लिए जितने अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, अभी हकीकत की बहस थी, इल्म, इल्म का तर्जमा क्या करेंगे? साइंस, फिलोसफी, नॉलेज, नॉसेस, विजडम, कितने अल्फाज हैं। इल्म का मुतरादिफ क्या है? है ना, जब तक दरमियान में पहले से इस्तिलाह तय न हो कि ये लफ्ज हम इस मानी में इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त तक नतीजा खेज नहीं हो सकती बहस। वरना मुमकिन है कि वही लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ किसी मानी में, आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी मानी में, और नतीजा ये होगा कि किसी मुश्तरक या मुफीद या मुअय्यन या हकीकी सही सही दुरुस्त नतीजे तक नहीं पहुँच सकेंगे। और हमारे यहाँ इसीलिए दुनिया में इस वक्त, तमाम आलम में जो इस वक्त एक इंतशार है, फिक्री जहनी और अकीदों का इंतशार, इसमें बहुत कुछ वो खियानत है जो लफ्जों ने की है। कहीं दानिस्ता और कहीं ना दानिस्ता, लफ्जों ने खियानत की है। लफ्ज, लफ्जों को अमीन बनाना भी हुनर होता है। लफ्जों को सच्चाइयों का अमीन बनाना बहुत बड़ा हुनर है, और ये हुनर उसी मकतब में सीखा जा सकता है जहां मुदर्रिस सादिक हो और अमीन। सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। खुदा का शुक्र है आप साथ दे रहे हैं, तो ये जुमले और आगे बढ़ाऊं और उनवान की वजाहत और करूं, हकीकत और हुसैन दोनों का रिश्ता क्या है और इस बहस का इस सूरे से क्या ताल्लुक है। बहुत वाज़ेह है, मैंने लफ्ज़ कुल की तरफ कल इशारा किया और उससे ज़्यादा तफसील मुमकिन नहीं है। अगर ये अय्याम मुहर्रम की तहदीद ना होती, यानी महदूदियत ना होती वक्त की, तो यकीनन अर्ज करता सिर्फ कुल पर 10-12 मजलिसें होती, लेकिन मैं सवालात कायम करता हूँ, आगे बढ़ना हूँ। तालिब इल्मों के लिए चैलेंज है, चैलेंज कबूल कीजिए और वर्क कीजिए, काम कीजिए, आगे बढ़िए। सादा सा तर्जुमा जो लोगों ने किया है और जो इफ़हाम व तफहीम के लिए पहले मरहले में है, वो तो यही है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला अपने हबीब से फरमाता है, कहिए कि वो एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहिए कि वो माबूद बरहक एक है। ये कहिए के बाद वो जो है, ये किसकी तरफ इशारा है? हुआ पे अगर आप साकिन हो जाएं तो हु, ये हु किसकी तरफ इशारा है? इसका सादा सा तर्जुमा ये है कि हु हकीकत मुतलका की तरफ इशारा है। हु इशारा है उस हकीकत की तरफ जिसकी तरफ इशारा मुमकिन नहीं है। इशारा है उस हकीकत मुतलका की तरफ जिसकी तरफ यूं इशारे हिस्सी मुमकिन नहीं है। हिस्सी इशारा मुमकिन नहीं है, किसी जिहत में इशारा करके, किसी शय की तरफ इशारा करके, किसी समत में इशारा करके। आप कहें वो, चाहे वो जहनी और चाहे जाहरी, किसी भी एतबार से किसी खास जहत में इशारा करके, मुअय्यन करके उस हकीकत कुबरा की तरफ इशारा करना मुमकिन नहीं है। इसलिए इस हु को समझिए कि ये हु और दूसरी जगहों पे जो हु आया है उससे मुख्तलिफ है। और मुझे कहने दीजिए फिर कि ये हु वो है जो काबिल तर्जमा नहीं है। क्या बुलंदियां हैं कुरान मजीद की बलागत और फसाहत की, क्या बुलंदियां हैं कुरान मजीद की फसाहत और बलागत की। कुल हुवल्लाहु अहद, ये हु हकीकत मुतलका है। अभी तो बहस हो रही थी कि हकीकत तक पहुंचना आसान ही है, चे जाए कि हकीकत मुतलका। अब मैं मिसाल अर्ज करूं, महसूस मिसाल, हकीकत को कशफ करना या किसी शय को कशफ कर लेना, किसी शय को मुनकशिफ कर लेना, इसी को हम इल्म समझते हैं। इल्म क्या है? इल्म क्या है? इल्म हम समझते हैं किसी शय का मुनकशिफ कर लेना। कशफ हकीकत इल्म है। अच्छा, अब जरा जो बड़े बड़े लॉजिक में काम करने वाले और फिलॉसफी में काम करने वाले, मंतिक और फलसफे में, हिकमत में काम करने वाले हैं, उनकी किताबें देखिए और सबसे पहले उनसे पूछिए कि इल्म की डिफिनीशन क्या है। इल्म कहते कैसे? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो चीज़ बहुत वाजह होती है उसको और वाजह करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं मजबूरी होती है कि उसको वाजे करना भी पड़ता है। वजूद बहुत वाजे है, कोई कहे वजूद की तारीफ कीजिए, नामुमकिन है वजूद की तारीफ, लेकिन करनी पड़ती है कुछ ना कुछ, चाहे वो तारीफ लफ्जी ही सही। इल्म, हम में से हर शख्स यहाँ जो भी बैठा है वो इल्म से कुछ ना कुछ ज़रूर वाकिफ है, और वो ये जानता है कि इल्म अच्छी चीज़ है। जिसके पास इल्म होता है वो अपने इल्म पर नाज करता है। कोई भी शख्स जो इल्म नहीं रखता वो इल्म न रखने पर नाजा नहीं होता। ये सब चीज़ें हैं, मगर इल्म क्या है डिफाइन करें। डिफिनीशन, परफेक्ट लॉजिकल डिफिनीशन बहुत मुश्किल है। अब बस इससे ज़्यादा बोझल नहीं करूँगा गुफ्तगू, लेकिन एक दो जुमले अर्ज़ करूँ, और साथ दे रहे हैं आप माशाल्लाह, तो एक मंजिल तक पहुँचेंगे हम। इल्म किसी शय का इनकिशाफ है इंसान के जहन में, इंसान के जहन में, माइंड, माइंड है ना हम सबके पास, ये जो ह्यूमन माइंड है, इंसानी जहन, इसमें किसी शय का इनकिशाफ इल्म है। लफ्ज बदल दूं, किसी शय की तस्वीर का जहन में आ जाना इल्म है। और ये बाकायदा ये इन्हीं तकरीबन इन्हीं अल्फाज में, ये जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें भी तकरीबन ये मिल जाएगा। इल्म क्या है? इंतबाउ सूरत शय, किसी शय की तस्वीर, किसी शय की सूरत का जहन में मुंतबिह हो जाना, जहन में आ जाना इल्म है। तस्वीर के भी कितने रुख हैं? क्या यहां आके कामिल हो जाती है तारीफ? पहली बात तो ये थी, आज से तकरीबन 150-200 बरस पहले तक तो यही लोगों को मालूम नहीं था कि तस्वीर बन भी सकती है। भाई फोटोग्राफी की तारीख कितनी पुरानी है। और बहुत से लोग, ये जो चेहरे पर आपके नक्शा है, रंग है, ये अरज है, तो लोग समझते थे कि ये आरस काबिल इंतकाल नहीं है, यानी ये मुंतकिल नहीं हो सकता, ये हमारी चीज़ है, ये कहीं और मुंतकिल नहीं हो सकती। एक बहुत बड़े बुजुर्ग फलसफी थे मकतब मुल्ला सदरा के, जिनका नाम था मुल्ला हादी सबजवारी, आज तक उनकी किताबें हौज़ इल्मिया में पढ़ाई जाती हैं। अब ये हौज़ इल्मिया का एक अंदाज़ है, बहरहाल पढ़ाई जा रही हैं किताबें, 100-100 बरस से, 150-150 बरस से एक ही किताब पढ़ाई जा रही है। हालांकि इस फ़कीर का कहना यह है कि निसाब तालीम इतना जीता जागता होना चाहिए कि हर साल नया निसाब तैयार होना चाहिए, इसलिए कि इल्म आगे बढ़ रहा है, इल्म मुसलसल आगे बढ़ रहा है। बहरहाल अब ये मर्सिया और नवा अभी नहीं शुरू करूंगा, लेकिन 150 बरस 200 बरस से ये किताब पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। तो खुद ये हकीम, ये फलसफी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा रुतबा है उनका, रूहानी शख्सियत बहुत बड़ी थी, लेकिन फलसफी के एतबार से कहा जाता है कि कैमरा उन्हीं के ज़माने में ईजाद हुआ और एक शख्स मगरबी दुनिया से गया और उसने उनका फ़ोटो खींच के उनके सामने पेश किया, तो खुश होने से ज़्यादा उन्हें हैरत हुई, कहने लगे ये मुमकिन कैसे है कि अरज मुंतकिल हो जाए। और हमारे ये मुमकिन कैसे है कि ये अरज जो काबिल इंतकाल नहीं था, यानी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था एक जगह से दूसरी जगह, वो कैसे ट्रांसफ़र हो गया, ये मुमकिन कैसे हुआ? तस्वीर की दाद नहीं दी उन्होंने, वो इस मसले को हल करने में मशगूल हो गए कि क्या अब तक जो हम फलसफे में पढ़ते आए थे वो गलत था या ये गलत है। ये गुफ्तगू यहीं रोकता हूँ। बहरहाल एक तस्वीर वो है जो आप सिंपली कैमरे से खींचते हैं और उसमें आपका रंग और चेहरे का नक्शा आ जाता है। उर्दू में बा मुहावरा जमान में नमक नक्शा कहते हैं, तो अक्सर नक्शा आ जाता है, नमक नहीं आ पाता है ना। एक तस्वीर वो है कि जिसमें नमक नक्शा दोनों आ जाता है, एक तस्वीर वह है जिसमें सिर्फ जाहिरी चेहरा आएगा, जाहिरी बदन। अच्छा, वो जो हॉस्पिटल्स में एक्सरे लेते हैं, और हमारे यहाँ एक उससे भी ज्यादा आगे बढ़ गए, अब वो जो MRI और CT स्कैन और क्या क्या होता है, अब ये सब लफ्ज़ तस्वीर की के मसादीक हैं। तो सवाल ये है कि इल्म किसी शय की इतनी गहरी तस्वीर उतारता है, जहन में जो तस्वीर आती है ये तस्वीर किसी शय की कितनी गहरी होती है, जाहिरी तस्वीर है, बातिनी तस्वीर है, या जाहिरी से लेकर बातिनी तक मुकम्मल तस्वीर है। अगर कोई चीज 3 डायमेंशन वाली है तो मुकम्मल तस्वीर है, गौर फरमाएं आप। और क्या यह भी मुमकिन है कि 4th डायमेंशन को भी तस्वीर में कैद किया जा सके? क्या यह भी मुमकिन है कि 5th डायमेंशन को भी तस्वीर में कैद किया जा सके? फोर्थ डायमेंशन से सब वाकिफ हैं, फिफ्थ डायमेंशन से वाकिफ नहीं होंगे तो मेरी कई बरस पहले की कराची की तकरीर सुन लीजिएगा। अभी नहीं वजाहत करूंगा कि मैंने फिफ्थ डायमेंशन पर, सिर्फ फिफ्थ डायमेंशन इसी पर तकरीर की थी। तस्वीर इल्म की तारीफ क्या हुई, इल्म की तारीफ। अच्छा, ये जहां जहां भी तस्वीरें ली जा रही हैं, नूर का एक रोल जरूर है। ये जो आप जाहिरी तस्वीर लेते हैं इसमें भी नूर का रोल है, एक्सरे उसमें भी रेज हैं। जितने तरीके हैं तस्वीर बनाने के, तमाम तरीकों में नूर का एक रोल है। तवज्जो है। अब मैं अर्ज कर रहा हूं इस मिसाल को देकर, गुफ्तगू को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इस मिसाल को देकर बहुत देर तक, बहुत दिनों तक सोचा है, तब ये जुमला कह रहा हूं, अगर हकीकत की मुकम्मल तस्वीर हासिल करनी है तो उस नूर तक पहुंचना होगा जिसका नाम हुसैन इब्ने अली। कोई मुबालिगा नहीं है। हकीकत का इल्म हासिल करना है तो हुसैन से हासिल होगा, और हकीकत से इश्क करना है तो वो इश्क का सलीका भी हुसैन से। जो लोग कलमाए तौहीद जबान पर जारी करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं और हुसैन से आशना नहीं है, वो न ला इलाहा इल्लल्लाह से आशना है न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। महज मुगालता है, मुगालता है। हैं ख्वाब में हनूज, जो जागे हैं ख्वाब में, वो भी एक मंजिल होती है ना। ख्वाब में इंसान जागता है, हालांकि वो ख्वाब में होता है। जब वाकई सुबह बेदार होता है तो वो दूसरों से नकल करता है कि हमने ख्वाब देखा था कि हम सो रहे थे, फिर हम उठ गए, फिर हमने फुलां को देखा, ये उठ गए, ये ख्वाब ही में उठ गए थे, हकीकत में पड़े सो रहे थे। हैं, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह की नेमत अजीम नेमत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नेमत अजीम नेमत है, लेकिन खुदा की कसम व कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम व कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम, मुमकिन नहीं है कि इन हकायक तक पहुंच सके इंसान हुसैन से नाशना रहकर। हुसैन से ना आशना रहकर कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से आशना हो सकता है? अगर कोई कहे हाँ तो मैं कहूंगा खुद रसूल को झुठला रहा है, इसलिए कि रसूल ने कहा हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। तवज्जो है। ये सिर्फ हमारी अकीदत नहीं है, ये हमारी निरी मजहबियत नहीं है, यह हमारी मसलक परस्ती नहीं है, यह हमारा तशय्यु सियासी नहीं है। शीयत कोई सियासी तहरीक नहीं है। जो चीज मस्जिद से और घर से शुरू हो वो सियासी नहीं होती, चौपाल से शुरू होती हैं सियासतें। शियत एक हकीकत है। अब एक जुमला अर्ज कर दूं, शियत नाम ही है हुसैन की रोशनी में हकीकत तक पहुंचने का। एक सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। शरीयत नाम ही है हुसैन से की रोशनी में, उस रोशनी में जिसका नाम हुसैन है। हकीकत तक पहुंचने का नाम है शरीयत। ये भी एक तारीफ है, ये भी एक डेफिनेशन है। इसीलिए वो शख्स शिया हो ही नहीं सकता जिसके दिल में सोज़े गमे हुसैन ना हो, मुमकिन नहीं है। और ये मुमकिन नहीं है कि शमा जल रही हो और उसके आंसू ना बह रहे हों, मुमकिन नहीं है। कहीं आपने देखी है मोमबत्ती जलती हुई ऐसी जिसमें उसके कतरे टपक ना रहे हों? तो जो लोग कहते हैं कि हमारे दिल में सोज़े गमे हुसैन है और आंखें खुश्क नजर आती हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है। जब्त करें, अभी कुछ गुफ्तगू बाकी है, जब्त करें। ये जुमले मैं इसलिए कहता हूं ताकि खुदा जाने किस वक्त किसका जुमला किसके दिल में उतर जाए, हकीकत और हुसैन बहुत बड़ा उन्वान है। मैंने अर्ज किया कि ये उन्वान 8-10 दिनों में मुकम्मल नहीं होगा, मगर ये उन्वान बहुत अहम है। जब मैं हकीकत कह रहा हूं तो उस हकीकत कुबरा से लेकर और जहां जहां लफ्ज हकीकत और मफहूम हकीकत और मानी हकीकत के मसादिक मिलते चले जाएं, वहां तक हुसैन की रोशनी साथ देने के लिए मौजूद रहेगी। तौहीद समझना हो तो हुसैन अलैहिस्सलाम से समझें, नबूवत समझना हो तो हुसैन अलैहिस्सलाम से समझें, विलायत की हकीकत समझना हो तो हुसैन अलैहिस्सलाम से समझें, और सरकार सैयद शुहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन हयात तैयबा को, आपकी शख्सियत को, आपकी ज़िंदगी को सिर्फ तारीख निगारों की महदूद निगाह से ना देखें। तारीख आलम हस्ती के साये की मकदार बताती है, तारीख आलम नूर की पहनाई की पैमाइश नहीं कर पाती। हाँ, सख्त हो गया ये जुमला। ये नूर जुल्मत की बहस भी यूं ही नहीं आई है जहन में, कुरान मजीद से लेकर और हिकमत तक साया विल, ये भी एक अल्लाह सुबहानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, गौर करो कि हमने साये को किस तरह फैलाया है, साये को किस तरह फैलाया है। और ये तारीख जो मुअर्रिखों ने लिखी है, ये तो साये की भी पूरी पैमाइश नहीं कर पाती। अभी तक तारीख बहुत नातमाम है, बहुत तिश्ना, और खुसूसियत के साथ मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि ज़ाहिरी तारीख़ ज़िंदगी से भी मुअर्रिखीन ने जिस कदर एराज़ किया है, यानी जितनी चश्मपोशी की है, जितनी बेवफाई की है, जितनी ख़यानतें की हैं, नहीं लिखी तारीख, सही तारीख नहीं लिखी, पूरी तारीख नहीं लिखी गई। और इसीलिए और तो और मशहूर मिसाल है, सारी कायनात में फैले हुए माशाल्लाह मुसलमान जान छिड़कते हैं, जान निसार करने के लिए तैयार हैं, दम भरते हैं सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मगर हुजूर की तारीख विलादत क्या है नहीं मालूम। कोई कहता है कि 2 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है 5 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है 7 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है 9 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है 17 रबीउल अव्वल है। ये क्या है? तारीख, हिस्ट्री। और क्या इस हिस्ट्री पर एतमाद करके हकीकत को तक पहुंचा जा सकता है? इस तारीख पर एतमाद करके हकीकत तक पहुंचा जा सकता है? अच्छा, फर्ज कीजिए कि जब हुजूर पैदा हुए थे तब तो आलम अरब मुशरिक था, काफिर था, बुत परस्त था, वो जानता ही नहीं था कि कौन पैदा हुआ है, नहीं जानता था, बेखबर था, अक्सरियत बेखबर थी कि कौन पैदा हुआ है। जो जानते थे वो जानते थे, जो नहीं जानते थे वो नहीं जानते थे, जो जानते थे वो जानते थे कि कौन पैदा हुआ है। ये भी रिवायत है। अब अगर हमारे पास रिवायत है तो आपको हक क्या है इनकार करने का? आप बेखबर हैं तो क्या हम भी बेखबर हैं? बहरहाल यहीं ठहर के अपना तकरीबन ये शेर मुझे अच्छी तरह सन याद है कि मैंने सन 1983 में ये शेर कहा था एक नातिया कसीदे में कि जुल्मते तारीख के फर्जंद क्या पाएं सुराग, जुल्मते तारीख के फर्जंद, जुल्मते तारीख के फर्जंद क्या पाएं सुराग, इसकी तारीख तजल्ली अर्श पर तहरीर है। नूर मुस्तफ़ा कब खल्क हुआ, ये तो अर्श ही पर तहरीर है, उस तक पहुंच भी नहीं सकती हमारी निगाहें, क्योंकि हम तो पैदा ही हुए हैं जुल्मत तारीख में, हमारी निगाहें वहां तक कहाँ पहुंच सकती हैं। मगर ये कि वो खुद बताएं कि कुंतु नबियन व आदम बैन अल्माए व तीन, मैं तो नबी था उस वक्त भी जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, और वो खुद पुकार के कहें या अली कुंत वलियन व आदम बैन अल्माए व तीन, ए अली तू उस वक्त भी वली था जब आदम आबो गिल के दरमियान। बस आप तसव्वुर फरमाएं कि क्या इस तारीख पे हम भरोसा कर सकते हैं? ये तारीख, हालांकि और बहुत सी चीज़ों की तारीखें मुअय्यन कर ली गई, हुजूर की विलादत की तारीख, खैर मैं अर्ज़ कर रहा था विलादत हुई तो जो जानते थे वो बहुत चंद नफूस थे, नफूस कुदसिया, हम उसे नफूस कुदसिया ना कहें तो क्या कहेंगे। रिवायत है कि जब हुजूर की विलादत हुई है तो जनाबे आसिया और जनाबे सारा और जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा के साथ साथ अगर यहाँ से कोई शरीक था मुआशरे मक्का से तो सिर्फ जनाबे फातिमा बिनते असद, और जनाबे फातिमा बिनते असद ने हुजूर की विलादत के बाद आकर हज़रत अबू तालिब से फरमाया कि ये बच्चा बड़ा मुबारक पैदा हुआ है, नहायत मुबारक है, मसऊद है, क्या नूरानी बच्चा है। इस बच्चे की विलादत के साथ ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ कि मुझे शाम दमिश्क और बुसरा के किले नज़र आने लगे, और उस वक्त जनाब अबू तालिब ने किसी ताज्जुब का इजहार नहीं किया कि तुम क्या कह रही हो, कैसा नूर, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। मुस्कुरा के आलिमाना इत्मीनान के साथ, आरिफाना तुमअनीनत के साथ, इल्म इरफान के जलाल और जमाल में डूबी हुई मुस्कुराहट के साथ एक मरतबा कहा कि हाँ फातिमा बिनते असद, हाँ बिनते असद, ये पैदा होने वाला आखिरी नबी है जिसका वादा अल्लाह ने हर गुज़श्ता नबी की ज़बान पर किया है, और तुम्हें ये भी बता दूं कि इसके बाद इसका वसी 30 बरस के बाद तुम्हारे बतन से पैदा होने वाला है। सलावात पढ़ते मोहम्मद वाले। तो ये तो विलादत की तारीख, अब हम किससे पूछें तारीख? जिन्होंने बायकॉट किया था उनसे, या इस आरिफ घराने से पूछें, इस आलिम घराने से पूछें, इस हकीम घराने से पूछें? हम किससे पूछें? यतीमुल अक्लों से, यतीमुल अक्ली में मुब्तला नादानों से, या इन वजूदात कुदसिया से, इन नफूस कुदसिया से? क्या नफ्स कुदसी है, क्या नफ्स कुदसी है, क्या नफ्स कुदसी है अबू तालिब का, के इस दुर्रे यतीम आमिना की सरपरस्ती हक ने सुपुर्द की है अबू तालिब। और जब अबू तालिब ने खिदमतें की हैं तो अबू तालिब के अमल को अपना अमल कहकर सनद इम्तियाज से सरफराज फरमाया, अलम यजिद का यतीमा फहावा व वजद का वालन फहदा, अलम यजिद का यतीमन फहावा, क्या हमने तुम्हें यतीम पाया तो तुम्हें आगोश रहमत में जगह नहीं दी? ये किसकी आगोश रहमत है, किसकी आगोश आगोश रहमत इलाही बन गई? कौन है, या अब्दुल मुत्तलिब या अबू तालिब? इसीलिए हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने जमाने में, अपने वक्त में हुज्जत खुदा थे, हुज्जत खुदा थे, लफ्ज हुज्जत इस्तेमाल किया है। अब्दुल मुत्तलिब जद्द मुस्तफा अपने वक्त में हुज्जत खुदा थे और अबू तालिब उनके वसी थे, अबू तालिब उनके वसी थे। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, बहुत 20-30 बरस पुराना जुमला है जो सबसे पहली बार मैंने लखनऊ में गुफरा माफ के इमामबाड़े में अर्ज किया था कि लोग अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब को तन्हा वली समझते हैं, अली खुद वली नहीं थे, अली वली इब्ने वली इब्ने वली इब्ने वली इब्ने वली तादम। हकीकत है, ये हर बार दोहराई जाएगी, लोग इसी एक जुमले को सुन के कहेंगे इन्होंने अपनी पूरी तकरीर दोहरा दी। ऐसा जुल्म ना कीजिएगा, एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। ये जो मौजू है महफूज रहे है, लेकिन ये हकीकत है। और आपने तो नारा बुलंद करना शुरू कर दिया तो मैं खामोश हो गया, कुछ मेरी भी सांस रुक गई थी। दो मकामात हैं, एक वसी एक वली। अली वसी इब्ने वसी इब्ने वसी इब्ने वसी इब्ने वसी ता आदम, लेकिन अली वली इब्ने वली इब्ने वली इब्ने वली ता आदम और मा कबल आदम। अब यहाँ जो मसला पैदा होगा कि कबल आदम कौन वली था, आसान है हकीकत को समझना, हकीकत को समझना आसान है, हकीकत हकीकत। कबल आदम कौन वली था, खुद अली, तो गोया यही वली अव्वल यही वली आखिर, बिल्कुल वही शान है, चूंकि नफ्से मुस्तफा है ना, मुस्तफा भी नूर नबुवत उनका, वही नबी अव्वल वही नबी आखिर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। आदम से पहले कौन नबी था, बनस्से मुस्तफा खुद मुस्तफा, और सबसे आखिरी नबी कौन है, खातमुन नबीयीन खुद मुस्तफा।
قبلِ آدم نبی کوئی تھا؟ ہاں کون تھا؟ مصطفیٰ. دلیل خود مصطفیٰ نے کہا کنتو نبیاً کنتو نبیاً و آدم و بین الماء و الطین. میں نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اور خاتم النبیین کون؟ خود مصطفیٰ. اور جو نفس مصطفیٰ ہو, اگر یہ حقیقت دلوں میں اتر گئی, ذہنوں میں آ گئی, سمجھ میں آ گئی, اور یہ حقیقت سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے, خود مصطفیٰ نبی اول, خود مصطفیٰ نبی آخر, تو پھر اس نقطہ نظر سے کیا ہم مصطفیٰ کو بھی کہیں ہو الاول ہو الاخر؟ اور جسے قرآن نے کہا نفس مصطفیٰ وہ ہیں علی. علی بھی ولی اس وقت ہے جب آدم آب و گل کے درمیان, اور پیغمبر خاتم کے بعد بھی ولی کون؟ علی. علی بھی ہو الاول ہو الاخر. نبی ہو تو ایسا, ولی ہو تو ایسا, امام ہو تو ایسا جو واقعاً خدا کی صفتوں کو ظاہر تو کر سکے. اس لیے کہ قرآن مجید میں خدا نے کہا ہے اپنے لیے ہو الاول ہو الاخر. پروردگار نے اپنے کے لیے کہا ہو الاول ہو الاخر. نبی بنایا تو ایسا جو ہو الاول ہو الاخر, ولی بنایا تو ایسا جو ہو الاول ہو الاخر, اور لقب دیا تو ایسا کہ خود بھی مولا ہے, نبی بھی مولا ہے, علی بھی مولا. مجید میں اللہ نے خود اپنے لیے مولا کہا ہے یا نہیں؟ مولا کہا ہے متعدد بار. اب وقت نہیں ہے کہ میں آیتیں گزارش کروں, وقت تو تمام ہو چکا. غدیر خم میں پیغمبر نے فرمایا تھا یا نہیں من کنتو؟ یہاں بھی لفظ کنتو ہے, یہاں بھی لفظ کنتو ہے. اس نبی نے جس نے کہا کنتو نبیاً, میں نبی تھا, جس نبی نے کہا کنتو نبیاً و آدم بین الماء والطین, میں نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے, وہی نبی کہہ رہے ہیں من کنتو مولا, میں جس کا مولا تھا. اب میں سمجھتا ہوں جب سے نبی کی نبوت ہے اسی وقت سے نبی کی مولائیت بھی ہے, تو بعد میں جتنے آئے سب کے مولا مصطفیٰ, اور جس جس کے مولا مصطفیٰ اس اس کے مولا علی مرتضیٰ ہیں. صلوات پڑھ دے محمد.
Yeah.
सबको सलामत रखे, जिंदा रखे। अगर वो हकीकत समझ में ना आई जिसका नाम अली है, तो वो हकीकत कैसे समझ में आएगी जो खालिक़े अली है। बस गुफ्तगू रोक रहा हूं। अगर अली भी समझ में ना आए, खालिक़े अली भी समझ में ना आए, तो इब्ने अली के दरबार में आ जाओ। हुसैन इब्ने अली, सर झुका के आना, दिल में गम लेके आना। अब वक्त बिल्कुल नहीं है कि मैं एक एक लफ्ज पर जो बातें जहन में आ रही हैं अर्ज़ करूं। तमाम दुनिया का अदब और लिटरेचर पढ़ें, तमाम दुनिया के ग्रेट पोएट्स उनको पढ़ें और देखें कि गम का हकीकत से क्या ताल्लुक है। गम, गम। मैं वादा कर रहा हूं इस मिंबर हुसैनी से, खुलूस के साथ हुसैन के बार की बारगाह में आ जाओ, अली भी समझ में आएंगे, नबी भी समझ में आएंगे, खुदा भी समझ में आएगा। सारी मुश्किल आलम इस्लाम की यह है इस वक्त, तमाम आलम इस्लाम और तमाम बशरियत की, कि दो शख्सियतों को नहीं समझ पाए, समझने की कोशिश नहीं की। अली इब्ने अबी तालिब को नहीं समझ पाए और हुसैन इब्ने अली को नहीं समझ पाए, ना गदीर समझी ना करबला, अभी तक नहीं समझ सके। अगर मुसलमानों के दरमियान, नऊज़ु बिल्लाह नस्तजीरु बिल्लाह, अगर मुसलमानों के दरमियान ये दहशतगर्दी की एक रिवायत चली आ रही है, तो सिर्फ इसलिए कि इन्होंने ना गदीर की विलायत को समझा है ना करबला की शहादत को समझा है, ना गदीर की विलायत को समझा न करबला की शहादत को समझा। बस आपकी आंखों में आंसू आ गए, मैं खुद मुस्तरिब हो जाता हूं, इसलिए कि यहां वक्त की महदूदियत है। इसलिए बस समझिए इशाराती गुफ्तगू कर रहा हूं, बयान का तो मौका ही नहीं है, इशारे हैं, हर जुमला एक इशारा है। कल मैंने अर्ज किया था हुसैन मदीने से चले, बहुत बड़ी बहस समेट के एक जुमला कह रहा हूं। तारीख पढ़ने वालों, अब ये बहस ना किया करो कि कौन कौन हुसैन के साथ नहीं आया, ये जस्तजू किया करो कौन कौन हुसैन के साथ आया। ये ना सोचो, ये ना देखो कौन कौन नहीं आया और किस किस सबब से नहीं आया, क्या क्या उजर तराशियां की गई। नहीं, यहां ठहर के एक बार बार उठने वाले सवाल का जवाब दे दूं एक जुमले में। आका हुसैन अलैहिस्सलाम के मदीने से निकलने और करबला पहुंचने और शहीद होने पर एक बड़ा सवाल किया जाता है बार बार, कि बहुत से सहाबा, बहुत से बुजुर्ग, बहुत से अजीज, बहुत से अकरबा आए थे और हुसैन को रोक रहे थे, समझा रहे थे, मगर हुसैन ने किसी की मानी नहीं। हुसैन वो थे जिनकी सबको मानना चाहिए था, हुसैन मामूर नहीं थे कि सबकी मानते। और दूसरी बात अर्ज करूं ये जितने लोग भी आए थे, चाहे वो अब्दुल्लाह इब्ने उमर हो, अगर वो आए हों जैसा कि बाज़ रिवायतों में है, चाहे वो अब्दुल्लाह इब्ने उमर हो, चाहे वो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हो, चाहे मोहम्मद इब्ने हनफिया हो, चाहे कोई हो, किसी ने ये नहीं मशवरा दिया कि हुसैन सब ने बैत कर ली है तो आप भी कर लें। सब ने ये कहा इराक ना जाएं, ये कहा करबला ना जाएं, ये कहा कहीं और चले जाएं, ये किसी की जुरत ना थी जो हुसैन के सामने कहता यजीद की बैत कर लें। वाज़े है, कोई एक कौल नहीं मिलेगा, कोई एक फर्द
مومن سے مومن تر، مخلص سے مخلص تر، یا منافق سے منافق تر؟ جس کی جرات یہ ہوئی ہو کہ حسین سے کہے کہ یزید کی بیعت کر لیں، سوائے ان کے جو یزید کے تنخواہ دار ملازم تھے، ولید، مروان، ان کی کوئی حیثیت ہے؟ ان کی کوئی حقیقت ہے تاریخ انسانیت میں یا تاریخ اسلام میں؟ ان کی کوئی حقیقت ہے تاریخ میں؟ ظالموں اور جابروں اور فاسقوں کے نوکروں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت ان کی ہوتی ہے جو نظام جبر کو الٹ دیتے ہیں، حقیقتوں کی تاریخ ان کے دم سے آگے بڑھتی ہے۔ بس حسین چلے۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ حسین کے پاس آؤ گے تو حقیقت منکشف ہو جائے گی، منکشف، چاہے وہ حقیقت کبریٰ ہو یا تاریخی، جزوی، طبیعاتی، طبیعیاتی، مادی، ظاہری، اس دنیا کی حقیقتیں ہوں۔ بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے، چاہے وہ حقیقت کبریٰ ہو اور چاہے اس دنیا کی جزئی حقیقتیں، سب اس نور کی روشنی میں روشن ہو جائیں گی جس کا نام حسین ہے۔ اسی لمحے یاد دلا دو روایت، جناب بی بی ام سلمہ نے سنا تھا رسول سے کہ میرا یہ بچہ کربلا میں قتل کر دیا جائے گا، اس لیے جب امام حسین، سنا تھا، سنا تھا، بی بی کربلا گئی نہیں تھی، سنا تھا۔ اور کربلا کی وہ تربت، لفظ تربت یاد رکھیے گا، روایت میں ہے لفظ تربت، کربلا کی تربت، ایک مٹھی خاک، اس نشیب کی جہاں حسین قتل ہونے والے تھے۔ کون لے کر آیا تھا حضور کے پاس؟ ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ان ممالک میں بطور خاص جو شیعیت ہے اور جو اسلام ہے، بہت سے برادران اہل سنت، بہت سے شیعہ یہ تعزیے نکالتے ہیں، اور تعزیے میں ایک خاص چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تربت۔ اس تربت میں تھوڑی سی کربلا کی خاک ہوتی ہے، یہ تربت لے کے چلتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں جبرائیل یہ تربت لے کر آئے تھے پیغمبر کے پاس۔ جبرائیل یہ تربت لے کر آئے تھے پیغمبر کے پاس، حضور کو پیش کی، حضور نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تربت الحسین، یہ تربت ہے جہاں آپ کا بیٹا، آپ کا نواسا ذبح کیا جائے گا، تین دن کا بھوکا پیاسا، یہ اس نشیب کی خاک ہے۔ آقا نے لیا اور لینے کے بعد ایک شیشی میں رکھا، اور اس کے بعد اسے امانت کے طور پر جناب ام سلمہ کو پیش کر دیا، کہا بی بی ام سلمہ اسے حفاظت سے رکھنا، جس دن یہ خاک خون سے بدل جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا، اجرکم علی اللہ۔ بی بی نے یہ سنا تھا، صادق مصدق پیغمبر کی خب زبان مبارک سے سنا تھا۔ جب حسین کربلا سے روانہ ہو رہے تھے، بی بی ام سلمہ کے پاس گئے، بی بی ام سلمہ سے کہا یا امہ، اللہ اکبر، یہ بی بی کا مرتبہ ہے کہ حسین انہیں مادر گرامی کہہ کر پکارتے تھے، یا امہ، مادر گرامی میں جا رہا ہوں۔ بی بی نے کہا بیٹے نہ جاؤ۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کربلا کی، کربلا نامی زمین پر، عراق کی سرزمین پر تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ کہا کہ مادر گرامی کیا آپ سمجھتی ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، اور کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں اس نشیب کو دکھا دوں جہاں میں ذبح کیا جاؤں گا؟ ایک مرتبہ آپ نے نظر اٹھائی، اشارہ کیا، کچھ اسماء، اسماء الہیہ، ایک اسم اعظم زبان مبارک پہ جاری کیا، زمینیں پست ہوئیں، زمین کربلا بلند ہوئی، آپ نے دست مبارک آگے بڑھا کر ایک مٹھی خاک اور لی، کہا اسے اس تربت کے ساتھ شامل کر لیجئے جو تربت نانا دے کر گئے ہیں، اور جس دن یہ خون ہو جائے سمجھ لیجئے گا آپ کا بیٹا قتل ہو گیا۔ جس حسین میں یہ قوت ہو وہی حقیقتوں تک پہنچا سکتا ہے۔ بس دو جملے اور کہہ لینے دیجئے، چونکہ پہلی گزر چکی، آج دوسری تاریخ ہے، دوسری محرم، عموماً
عموماً دوسری محرم کو ہمارے ہاں جو ترتیب قائم ہے اس میں آقا کا مدینے سے چلنا بیان نہیں کرتے, کربلا پہنچنا بیان کرتے. اس لیے بس تربت کی بات ہو رہی تو میں بھی تربت تک گفتگو محدود رکھوں گا. ایک یہ تربت ہے, ایک یہ تربت ہے, یہ خاک ہے جو نشیب سے اٹھا کر جبرائیل لائے تھے, ایک یہ خاک ہے جو نشیب سے اٹھا کر آقا حسین نے خود جناب ام سلمہ کو دی اور اس وقت بھی گریہ ہوا. لیکن کہتے ہیں جب قافلہ دو محرم کو کربلا پہنچا, اب تفصیلات کا کوئی موقع نہیں, بس دو تین فقرے عرض کروں گا چونکہ وقت گزر چکا. جب کربلا پہنچا اور یہ طے ہو گیا کہ یہیں ٹھہرنا ہے, تو جیسے ہی جناب بی بی زینب نے سرزمین کربلا پہ قدم رکھا, ایک ایسی ہوا چلی کہ وہ تربت اڑی, وہ خاک کربلا اڑی اور بی بی کے چہرے تک آئی, مشام مبارک علیا مرتبہ جناب زینب تک پہنچی, اور ایک مرتبہ بعض روایتوں میں بی بی غش کھا کے زمین پر گر. آقا حسین آئے اور جناب بی بی زینب کو ایک مرتبہ اٹھایا, بی بی جناب زینب نے کہا بھیا یہ کس سرزمین پر ٹھہر گئے ہو, یہاں کی خاک سے تمہارے لہو کی بو آ رہی. آپ نے فرمایا بہن زینب اضطراب کا مقام نہیں صبر کا مقام ہے, بس سمجھ لو یہی ہماری قربانیاں ہونی ہیں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِغًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار ہمیں نور مبارک حسین کی روشنی میں حقائق تک پہنچا دے. معبود ملت اسلامیہ کو نور مبارک حسینی سے منور فرما دے. پروردگار پروردگار تو قسمتوں کو بدلنے والا ہے, معبود سرنوشت ملت اسلامیہ کو تبدیل کر دے, انہیں حسینی بنا دے, انہیں علوی بنا دے, انہیں مصطفوی بنا دے, انہیں پروردگار ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. میرے معبود عالم بشریت میں بے چینی ہے. معبود پروردگار فرزند زہرا اور وارث حسین کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لگا دے. ماتم حسین.